ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी।
ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कम्बाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का, और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1,52,757 करोड़, और करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे की 2 नई लाइनों और 1 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं यात्रा को आसान बनाएंगी, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। 121 किलोमीटर लंबी जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल की तीसरी लाइन और 37 किलोमीटर की सारडेगा भालूमुड़ा नई डबल लाइन को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 एफएम चैनलों की ई नीलामी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से मातृभाषा में प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और किसानों को मदद मिलेगी। कृषि अवसंरचना कोष किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा है कि देश का औषधि क्षेत्र वर्ष 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अभी यह 55 अरब डॉलर का है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी में उन्होंने कहा कि देश औषधि क्षेत्र में विश्व का अग्रणी केंद्र बनता जा रहा है, साथ ही किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने औषधि क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा के अल्पकालिक उपायों पर चर्चा हुई। गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार के बारे में सुझाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्यबल का गठन किया है। कल मंत्रिमंडल सचिव ने नई दिल्ली में कार्यबल की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कोलकाता में डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच से ध्यान हटाने और आरोपियों को बचाने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टरों को धमकी दे रही है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और हत्या का मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान ये देखने को मिला कि जनता का गुस्सा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच जारी है। नामांकन का काम कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 18 सितंबर को 6 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होगा। पेरिस में आज पैरालंपिक गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। भारत की भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ध्वजवाहक होंगे। इस बार 84 पैरा एथलीट का भारतीय दल 12 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। आईसीसी की नवीनतम जारी टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाज विराट कोहली को 2 स्थान बढ़कर 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा 1 स्थान के नुकसान से 6ठे पायदान पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।